यहाँ एक जुमला और नोट कर लें, एक पीरियड्स के बाद जो मर्द कहता है ना, मैं तुझे तलाक, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं चले जाएं आप, मर्द कहे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ एक बार के या 10 दफ़ा के, जैसे हमारे यहाँ तो गर्दान पड़ते हैं ना, तुझे तलाक है तलाक है तलाक है तलाक है, कि किसी ने कहा कि एक मर्द ने बीवी को तलाक दी और क्या कहा, तुझे तलाक है तलाक है तलाक है, फिर तू हलाला करके वापस मेरे पास आए फिर भी तुझे तलाक है तलाक है तलाक है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जहालत है। एक पीरियड्स जो मौके पे दी उस वक्त, एक 10 100 जितनी दफा गुस्सा दूर करेगा वो एक काउंट होती है। आज आप रू समझ गए ना, तलाक का ताल्लु अतलाक मर्रतान मर्रतुन व मर्रतुन, एक मौके पे एक नशिस्त में एक दफा बोली, उस पूरे पीरियड्स के दौरान मर्द उसको 100 दफा भी कहेगा तो वो एक ही गिनी जानी है। दूसरी तलाक का ताल्लुक है ही दूसरे पीरियड्स के साथ है। हमारे कल्चर में कहाँ गलत फहमी हुई है, जो बाहर है बहुत दीन वाले लोग होते हैं, कोई ऐसे तो नहीं कि कोई जाहिल है या ऐसे नहीं, अल्लाह ना करे, गलती क्या हुई कि लोगों ने एक ही मौके पे एक से ज्यादा बोलने को तीन बोलना समझ लिया, और उसी बुनियाद पे वो कहते हैं अब तीन हो गई हैं तो अब इसके अंदर दूसरा नहीं होगा ना। तो लिहाजा इसमें इंशाल्लाह ताला जब ये बात आप असल समझ गए तो बात फिर आगे क्लियर है। जी अब आप आशा।
अगर एक मर्द ने औरत को एक ही मौके पर 3 दफा तलाक 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 कह दिया है तो फिर इसका मतलब है उसको तब तलाक नहीं हुई, उसको रुखसत करने की जरूरत नहीं है।
जी बिल्कुल, एक मौके पे, अच्छा सवाल है इनका, एक मौके पे अगर मर्द ने गुस्से में 3 दफा कह दिया तो वो एक ही है, वो स्टिल हस्बैंड वाइफ है। यकीन करें अब आपके जिम्मे एक सवाल उठेगा कि अच्छा जो इतनी लाखों तलाकें हुई हुई हैं हमारे कल्चर में, उनका क्या हुआ है, क्या वो सारी गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अब आप पलट के सोचें, मैं खुद आपको सोचना सिखा रही हूँ ताकि बाद में जो चीज़ आपके जहन में आए तो उसका। अब आप इर्द गिर्द देखते हैं, मिसाल है किसी की खाला को, किसी की बहन को, किसी की को 3 तलाकें हो चुकी, वो घर आ गई, अब हुआ क्या? आप कहते हो उस शौहर ने एक ही मौके पर उसको 3 कह दी थी, राइट? अगर तो उसी मौके पे 3 कह दी थी तो 3 माह गुजरती तलाक तो हो चुकी है, लेकिन स्टिल उनके पास ये हक मौजूद है कि उससे दोबारा नया निकाह, नया हक मेहर, नए गवाह, दोबारा जो निकाह होगा अब नया जोड़ा ना कोई मंगवाए, लेकिन नई पूरी वो सारे अरकान जो 4 रुकन है उसके साथ निकाह होगा, ठीक है? तो वो औरत उस मर्द के साथ दोबारा कर सकती है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ कल्चर में है कि शायद गवर्नमेंट से नोटिस जाता है तो 1 महीने में नोटिस किया फिर दूसरे, वो फिर 3 जाएंगी। लेकिन अब जितनी भी तलाक हुई है, गलती क्या है, जिन लोगों का हक मारा जाता है, और आप इसी दूसरे पारे में पढ़ चुके हैं कि कयामत के दिन कुछ लोग इल्म वालों पर लानत करेंगे, क्यों? अभी एक औरत जिसकी इस तरीके से तलाक हुई, मर्द ने गुस्से में उसको 3 दफ़ा कह दिया, घर आ गई, फिर उसने मसला पूछा आपके दीनी मसाइल का हल, क्या मेरा घर बच सकता है, कोई तरीका है कि मैं पलट आऊँ क्योंकि मेरे मर्द ने गुस्से में तलाक दी थी? आप कहते हैं नहीं सॉरी, 3 तलाकें हो गई, आपका घर नहीं बसता, आपने उसका एक हक दबा लिया ना। कल क़यामत के दिन कितनी औरतें जो हैं ये हक मांगेंगी दीन वालों से जिन्होंने फतवे दिए थे कि भाई अल्लाह तू बता हमारा घर बस सकता, हमने सारी ज़िंदगी, फिर कई औरतें बाद में शादी नहीं करती, बेवाओं से भी ज़्यादा बुरी ज़िंदगी उनकी होती है, हालांकि वो स्टिल उनसे शादी कर सकते थे लेकिन नहीं करते। ये चीज़ें इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके बस इल्म आ गया और उसने इल्म की बात छुपाई, ऐसे शख्स पर अल्लाह का गज़ब बहुत होगा, तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। जी आप तहरीमा।
अगर कोई बेबी उनकी तलाक हो गया है तो अगर उनके बेटी की शादी करनी है पहले, फिर उधर मुझे होना जरूरी है?
हाँ जी, अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा हम रज़ात को देखते हैं उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। जी आप पूछें।
मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि अगर शोर जो है बीवी को तलाक देता है और वो कहता है कि तुम इधर के जब इधर का वक्त चल रहा है तुम मेरे घर नहीं रह सकती हो, तो क्या वैसे कह सकते हैं या उसको या ये औरत का हक होता है?
जी आप देखें कि जैसे हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं ना, तो बीवी कई दफ़ा महीना अपने पाकिस्तान रहने गई, पेरेंट्स के पास गई ना, तो अगर कोई मर्द इद्दत के दौरान, जैसे हमारे कल्चर में कि जी तलाक कह दी अब साथ नहीं रह सकते, तो लड़की माँ का के घर चली जाती है तो गोया कि उन्होंने अपना एक हक छोड़ दिया, साथ रहते तो रुजू के कितने मौके थे, दूर रह के कहाँ मौका रहेगा और कोई करने भी कहाँ देगा ना, तो लिहाजा अगर कोई चले जाते हैं तो ठीक है, उन्होंने अपना एक हक छोड़ दिया।
अगर औरत रहना चाहे लेकिन फिर भी मर्द कहे कि तुम नहीं इधर के दौरान तुम इधर नहीं रह सकती,
तो अगर औरत रहना चाहती है तो मर्द को उसको रहने देना चाहिए, ठीक है? चलिए अभी तक जो बात हुई इसमें तो हमने सिर्फ हस्बैंड वाइफ को डिस्कस किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज़ दफ़ा शादी के बाद बच्चे भी होते हैं ऑफ कोर्स, बल्कि बहुत सारे कपल्स में बच्चे, अब क्या किया जाए, अब इसका सवाल हम देखेंगे کہ بچے ہیں اور طلاق ہوتی ہے. اس ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مضمون بالکل طلاق اور نکاح کا چل رہا تھا اس کے ساتھ ہی آیت لگا دی، والوالدات یردن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو. یہ عام حالات کی بات ہے، ہر ماں اپنے بچے کو جو اپنا دودھ پلائے گی اس کیفیت کو روزات کہتے ہیں، دودھ پلا نرسنگ مدرس. بچے کا حق ہے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، حولین 2 سال، اور کاملین سے مزید اس کو پختہ کر دیا کمپلیٹ 2 سال. کیا یہ فرض ہے 2 سال پورے؟ نہیں، لیکن ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد پلائے گی تو گناہگار ہوگی، لیکن اس سے پہلے کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی ہے، اور جان بوجھ کے نہ چھوڑ پلائے تو گناہگار ہوگی. اب کیا ہوا، خدا نہ خواستہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران ہی طلاق ہو گئی، ہو سکتی ہے نا. اب کیا کیا جائے؟ اب آپ امیجن کریں کہ بچے کو کس کی زیادہ ضرورت ہے، ماں کی کہ باپ کی؟ ماں کی ضرورت ہے نا. تو اسلام کا مزاج کیا ہے کہ طلاق کے بعد چھوٹے بچے ماں کے پاس رہیں گے، لیکن جو ہی وہ بڑے ہوں گے، اب اس میں تحریمہ کے سوال کا جواب ہے کہ بڑے بچے جو ہی، خاص طور پہ بڑی لڑکیاں ہیں، بلوغت کے پاس پہنچ گئیں، پیوبرٹی کے پاس پہنچ گئیں، تو پھر وہ باپ کے پاس رہیں گے. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو رکھو. اس میں تھوڑا بہت فلیکسیبلٹی موجود ہے، ماں کے پاس رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، لیکن بچے بالغ ہو جاتے ہیں نا تو باپ کے پاس. کیوں؟ کہ چھوٹے بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، شفقت کی، محبت کی، دودھ پلانے کی، اور بڑے بچوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا لڑکی ہے وہ بڑی ہوگی، اب اس کی شادی ہونی ہے، تو ولی تو باپ نے بننا 100%. ایک سیپریٹڈ یا ڈیوورسڈ کپل ہے، بچوں کی شادی پہ وہی باپ ولی بنے گا. ہمارے یہاں تو ماں اتنا خلاف کر دیتی ہیں ان باپوں کے کہ بچے نفرت کرنے لگتے ہیں اپنے باپوں سے، چاہے وہ پاکستان میں، امریکہ میں، ناروے میں، کینیڈا میں، اس باپ ہی کو بلایا جائے گا اور وہ اس کا ولی بنے گا یا اس کی اجازت چاہی جائے گی، وٹ ایور سرکمسٹانسز کے ساتھ ہے. اسی طرح لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باپ کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، کاروبار چاہیے ان کو، ان کی ایجوکیشن ہے، تو وہ ماں کی نہیں. اس کے اپوزٹ آپ ذرا سوچئے دوسری طرف، کہ اگر بچے چھوٹے تو باپ کو دے دیے، اب کیا کیا جائے گا، باپ دودھ کہاں سے لے گا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر رضاعت کی مدت کے دوران طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، بچے کو دودھ ماں ہی پلائے گی، لیکن ماں کا کھانا اور کپڑے باپ کے ذمے ہیں، باپ اس کو دے گا. غور کریے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن وہ بچے کا باپ اب اس کا شوہر نہیں رہا. بہت بچے کے لیے بھی تکلیف کی بات ہے نا. اور اسلام بچے کا حق کہاں دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج ویسٹ میں ایک خاص ٹرم بول کر عورتوں کو اتنا زیادہ حق دیا جا رہا ہے، ایلمی بولتے ہیں غالباً، کچھ شاید اپنے نام سنا تو بتائیے گا. یعنی خاص طور پہ ویسٹ میں تو بہت آگے آ گیا ہے کہ عورتیں طلاق لیتی ہیں نا جب، تو اس کے بعد اب کچھ ایسے لاز پاس ہو رہے ہیں کہ جب تک اس عورت کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی وہ مرد اس کا سارا پیسہ دے گا. ایلیمنی کے نام پر اتنا ظلم ہو رہا ہے مردوں پہ. اب ہم تو کہتے ہیں نا عورتوں پہ ظلم ہے، اب اس کے ریئیکشن میں مردوں پہ شروع ہو گیا. جب تک اس عورت کی شادی نہ ہو یا وہ شادی نہ کرے، مرد اس کی سارے خرچے دیتا ہے. کیسے؟ ایک غیر عورت ہے، آپ کا اس کا کیا تعلق رہا؟ اور عورت نے کیا، مرد نے اپنی بیوی نہیں اب دوبارہ شادی کرنی. صرف اونلی ایک ہی صورت ہے اس کی شادی کے بعد، کہ عورت اس مرد کے بچوں کو پال رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے. عام حالات میں تو آف کورس شوہر ہی کھلاتا پلاتا ہے نا، لیکن طلاق کے بعد بھی کھانا کپڑے باپ کی ذمہ داری ہیں. نہ بچے کو ماں کی وجہ سے تنگ کیا جائے، نہ باپ کو. بچے کو ماں کو تنگ کرنا کیسے ہے کہ ماں سے زبردستی بچہ چھین لیا جائے، ملنے نہ دیا جائے. اور باپ کو تنگ کرنا کیا ہے کہ باپ کو اس کی حیثیت سے زیادہ پیسے مانگے جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی جتنی قدرت ہے اتنا پیسہ دے. عورت کہے جی کہ میرا خرچ لو، مجھے تو 5,000 کا جوڑا چاہیے اور مجھے تو یہ مہنگا کھانا چاہیے. معروف طریقے سے آپس کے معاملوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تنسوا الفضل، فضل کو بھولا نہ کرو آپس میں. تو لہٰذا اس صورت پہ پھر بچہ ماں پالے گی لیکن پیسے باپ دے گا. ہاں، ماں کو دوبارہ شادی کرنی ہے، وہ کہتی ہے بھائی میں نہیں پال سکتی تمہارا بچہ، تم لے جاؤ، کوئی بات نہیں. اگر بچے کا دودھ چھڑائے اجازت ہے، کسی دوسری عورت سے پلوانا چاہیں تو بھی اجازت ہے، دونوں صورتیں. لیکن ذمہ داری جو ہے وہ باپ کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو तो बात वाजे हो चुकी है। कितने लोग हैं सच बताएं प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में कि इस तरह की चीज़ों पे अमल किया जाए। इवन इसमें आगे हमायत के अंदर अगर मैं पूरा करवा दूं, इसमें ये बात भी आएगी कि इवन अगर बाप फौत हो जाता है, बाज़ दफ़ा बाप फौत हो जाते हैं, औरतें बच्चों के साथ होती हैं, बच्चे छोटे हैं, तो बाप के वारिस यानी जो उसके दादा दादी उसके अंकल फिर वो पैसे देंगे इस बच्चे के लिए। हमारे तो पहले ही निकाल देते हैं कि जाके ससुराल में। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे इस तरह की जहालत है कि शौहर वाली बीवियों के भी बच्चों के खर्चे सारे उनके मायके वाले उठा रहे हैं। जब डिलीवरी होनी है औरत को मायके भेज दो, क्योंकि अब ये ना बेचारी काम कर सकती है, हमें खिदमत करनी पड़ेगी, जाओ इसको भेज दो और ख़र्चा सारी नानी करें। कई कल्चर ऐसे हैं कि वहाँ मारूफ है कि बच्चा खाए नानी का कहलाए दादी का, ये हाल है। एक जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते बाप या बाप के रिश्तेदार। इस्लाम हर जगह औरत को सिक्योर कर रहा है। इस तरीके से फिर ये मामला पैचअप होगा। अब एक और कैफियत देख लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाए, और वो क्या है? बेवगी की इद्दत। अभी तक जो हमने इद्दत देखी है ना, ये तलाक की और उसकी डिटेल सी। अब दूसरी सूरत है खुदा ना खास्ता जुदाई तलाक के जरिए नहीं बल्कि मौत के जरिए हुई, ये भी तो होती है ना। कुछ जोड़े इस तरह जुदा हो जाते हैं और मेजॉरिटी हमारे यहाँ ऐसी ही होती है जहाँ डिवोर्स का रेशो कम है। तो क्या होगा? वल्लज़ीन युतवफ़ौन मिनकुम व यज़रून अज़वाजन, और वो मर्द जो तुम में से फौत हो जाएं, जो फौत कर दिए जाएं, पीछे बीवियाँ छोड़ें, क्या है? या तरबस नबी अनफुसी हिन्ना, औरतें रोकेंगी अपने आप को। तरबुस रबिसा से है रबास्वात, इंतज़ार करना, किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठना। अपने आप को रोकेंगी, किस चीज़ से रोकेंगी? नंबर एक, निकाह नहीं कर सकती औरत उन दिनों में, शादी का पैगाम नहीं दिया जा सकता यानी प्रपोज नहीं किया जाएगा, सुरमा नहीं लगाया जाएगा, खुशबू नहीं लगाई जाएगी और फैंसी कपड़े नहीं पहने जाएंगे। पहले सुन ले फिर सवाल आए जहन में, तो उसका बाद में जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। यानी इद्दत के दौरान औरत, ये कौन सी इद्दत हो रही है? बेवगी की। फ़र्क समझ आ रहा है बेवगी और तलाक की इद्दत का? बेवगी की इद्दत के दौरान औरत इस तरह की चीज़ें नहीं करती क्योंकि तरबुस है। कब तक रुकेगी? 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने कहाँ से काउंट होंगे? हिजरी कैलेंडर के मुताबिक, ये जो मून की डेट्स होती हैं जैसे मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउस सानी, इससे बाज़ फ़र्क पड़ जाता है, एक आधा दिन महीने का फ़र्क पड़ता है। और अरब मुल्कों में तो कभी आपका कोई वीज़ा लगा हो या कोई डेट हो तो बहुत केयरफुल रहा करें, क्योंकि ऐसे केसेस हुए कि बिल्कुल वो अपने हिसाब से गए कि नहीं जी अभी तो महीने का एक दिन मौजूद है, अभी वीज़ा वैलिड है, एयरपोर्ट पे पता चला नहीं ये तो वो महीने नहीं बल्कि इस्लामिक महीने थे, तो वीज़ा कैंसिल हो चुका था। इसी तरह से यहाँ ये चीज़ होगी। क्या कर सकते हैं इद्दत में? जिस घर में शौहर की वफ़ात हुई है औरत वहीं रहे, उसको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए क्योंकि औरत के इमोशंस होते हैं, उसको उस जगह से भी प्यार हो जाता है जहाँ पे वो शौहर के साथ रही, अच्छी यादें हैं, सिक्योरिटी भी होती है। क्यों भाई ये 4 महीने 10 दिन है? हिकमत क्या है? औरत को जज्बाती तौर पर स्टेबल करने के लिए, उसको थोड़ी सी तसल्ली होती है। और दूसरा ये चेक करना होता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। 4 महीने 10 दिन एक वो मुद्दत है कि जिसके दौरान अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो पेट में बच्चा हरकत शुरू कर देता है। बाज़ दफ़ा जब औरतों के ऊपर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसी सडन डेथ्स हैं कोई, तो मंथली साइकिल जो होता है वो बिगड़ जाता है। एक मंथ नहीं आए दो, औरत सोचे पता नहीं क्या दे, 4 माह के अंदर अंदर बाहर हाल दोबारा चक्कर हो ही जाता है। अब क्या हुआ? 4 माह 10 दिन। इसकी इद्दत की यानी डिटेल सारी वही है कि इसको अल्लाह ताला ने औरत के लिए एक वेटिंग पीरियड रखा। अब क्या हुआ? इद्दत पूरी हुई। आपको पता है कि इस्लाम से पहले इद्दत की क्या कैफियत थी? वो आपको इसकी आयत के साथ सुनाऊंगी इंशाल्लाह कहानी। तो फिर वाकई पता चलता है कि इस्लाम ने ये जो सहूलत दी है ये कितनी अच्छी है उससे जो कि दौर जाहिलियत में, और इवन स्टिल इस वक्त भी दुनिया में औरतों पर कितना जुल्म हो रहा है कि आखिर वो सती हो जाती हैं इस मामलात में। चलिए, फैज़ा बलग ना जला हन्ना, इद्दत पूरी हुई, अब क्या करें? फाल नफ़ी अनफुसिहिन बिल मारूफ, वट एवर जो करना चाहें, मसलन ज़ेबो ज़ीनत करें। हमारे यहाँ वो औरत जिसका शौहर फौत हो गया, अब इद्दत भी गुजर गई यानी साल हो गया 6 माह, न जाने के लोग उसको अब बहुत ज़्यादा सैड देखना चाहते हैं, सफ़ेद कपड़ों में देखना चाहते हैं। हिंदू कल्चर का असर है। आपको पता है कि हिंदुओं में आज भी औरतों में ये रिवाज है कि अगर उसका हस्बैंड मरता है तो उसको सती होना पड़ता है, औरत साथ आग में छलांग लगाती है, मर्द की वो अपनी बॉडीज को जलाते हैं तो औरत खुद जिंदा चलती है साथ। और जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने इस पे पाबंदी लगाई थी, ये जुल्म है। लेकिन असल में वो कहती हैं कि हमारे साथ बाद में इतना बुरा सलूक होता है, लोग ताने देते हैं, खा गई है उसको, ये मनहूस है, इसका साया पड़ गया। वो कहती हैं रोज़ मरने से एक दिन मरना अच्छा है। ना वो शादियों में जा सकती, ना किसी के बच्चे को देख सकती, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रोह हैं कि जो औरत के सारे सर के बाल मूंड देते हैं, मतलब उसको गंजा कर देते हैं कि इसकी ब्यूटी ख़त्म हो। नहीं, इस्लाम कहते उसके बाद नॉर्मल रखो। हमारे यहाँ नज़रों से देखते हैं, अच्छा जी अब किसको दिखा रही है, अब किसके लिए पहन रही है। आप पूछिए, आप शौहर वाली हैं, दिल से रख के हाथ पूछिए, आप किसके लिए पहनती हैं। कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर को दिखाती हैं और कितनी हैं जो दूसरों को दिखाती हैं। तो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा जान के किसी को ना उदास और दुखी देखना पसंद करते हैं, हालांकि कुछ भी कर सकती औरत, उसका दिल चाहे वो करे, ना चाहे ना चाहे। ज़ैनब बिनत जहश थी, उनके भाई का इंतकाल हुआ, 3 दिन जब गुजरे उसके बाद उन्होंने खुशबू लगाई और फिर कहने लगी कि अल्लाह की कसम मैं बेवा औरत हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात हो चुकी थी उस वक्त और ये आपकी नबी सल्लम की बीवी थी। कहने लगी मैं बेवा औरत हूँ, मुझे खुशबू की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आज खुशबू लगा के अपने भाई की मौत के शोक को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी से सुना कि वो औरत जो अल्लाह पर और योम आखरत पर ईमान लाती हो उसको ये जायज़ नहीं कि मरने वाले पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करें, सिवाय उस औरत के जिसका शौहर फौत हो तो वो उस पर 4 माह और 10 दिन तक सोग करें। मेरा ले हमारा सोग तो कब तक चलता है? पहले 10 दिन, फिर 40 दिन, फिर बरसी, फिर अगली बरसी, फिर अगली बरसी और बरसा बरस। हम तो भूलने ही नहीं देते, हमें तो अल्लाह के फैसले पसंद ही नहीं आते। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, जब तक कोई बाहर से हंसता और अंदर आके गले से रोए ना, हम कहते इसको गम ही नहीं हुआ। इतनी जहालत, इतनी जहालत। अच्छे भले लोग बाहर बातें कर रहे होते हैं, जूं ही देखते हैं कि ताज़ियत वाले घर में गए, चाहे 4 माह बाद मिले हों उसको, 6 माह बाद मिले हों, उसको देख के यूं फूट फूट के रोएंगे कि लगता है कि इससे ज़्यादा गमी किसी को नहीं हुआ। फिर उसके बाद चाय पानी भी शुरू हो जाता है, बातें भी शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, यकीन करें। मेरा तो दिल फटता है जब मैं लोगों को इस तरह की डिप्लोमेटिक हरकतें करते हुए देखती हूँ। इस्लाम कहता है कि बस ख़त्म, औरत अपनी ज़ात के बारे में अब कोई भी फैसला करे। एक सूरत है शादी ना करे, ना करे कोई बात नहीं, अगर उसको ज़रूरत नहीं महसूस होती, बस बच्चों के लिए नहीं करती, ना करे। पसंदीदा ये कि कर ले, जहाँ भी उसके लिए है वो अपनी राय दे सकती है, बहरहाल वो निस्बतन आज़ाद होती है। फिर वो औरत जहाँ रहे, मायके में रहे, ससुराल में रहे, अलग घर में रहे, उसी मुल्क में रहे, दूसरे में रहे, वो कर सकती है और निकाह भी कर सकती है। तो ये सूरत है इद्दत की। इसमें कोई क्वेश्चन? जी, इनका सवाल है कि अगर किसी की बीवी फौत हो जाए तो फिर मर्द क्या करे, मर्द दूसरी शादी कर ले 3 दिन के बाद। आप देखिए कि इल्लत समझ लें, रीज़न समझ लें कि इद्दत की 2 रीज़न्स हैं। नंबर एक, प्रेगनेंसी चेक करनी है, मर्द के लिए तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके साथ होगा। दूसरी बात यह है कि औरत को स्टेबल करना होता है, गम से निकालना होता है, औरत वाकई चोट लेती है और औरत मर्द के मामले में बहुत सेंसिटिव होती है। एक जंग थी, उसमें एक औरत ने अपने बाप भाई बेटे और शौहर को भेजा। कितनी खुशकिस्मत औरतें थीं कि चारों मर्द अल्लाह के रास्ते में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि बाप शहीद हो गए, उन्होंने इन्ना लीला पढ़ा, लेकिन कहने लगी मुझे खुशी है कि मैं एक शहीद की बीवी बेटी हूँ। फिर खबर मिली भाई चले गए, भाई की शहादत हुई, उस पर भी यही बोली। फिर बेटे की शहादत हुई, इस पर भी खुश हुई, लेकिन उसके आखिर में चौथी खबर मिली कि शौहर भी शहीद हो गए, तो एकदम रोने लगी जैसे तकलीफ़ और दुख से। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि औरत को शौहर से एक अजीब ही मामला है, अजीब ही नस्बत है। औरत मर्द के बारे में बहुत सेंसिटिव होती है और ये बात पता चलती है शादी के बाद। शादी से पहले इंसान उस तरह ये चीज़ें ले ही नहीं पाता ना। अब औरत का मामला ये है, और मर्द नंबर एक यह है कि दुख तो उसको भी होगा, लेकिन वो एक कल्चर है, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं कि बीवी की मौत शौहर के लिए कोनी की चोट है। कभी आप चल रहे हो ना तो एकदम दीवार को कोनी लगे, एकदम चीख निकलती है और विद इन फ्यू सेकंड्स ठीक हो जाती है। यानी मर्द को बीवी की तकलीफ़ होती भी है तो उसको जल्दी आती है। तीसरी वजह यह है कि मर्द जो होते हैं ना, वो उनके अंदर एक अल्लाह ताला ने बड़ापन रखा है। औरतें अमूमन गम के दिनों में ख़ुद पे तर्स खिलाना, बातें, हमदर्दियाँ पसंद करती हैं। मर्द बड़ा बनते हैं, इवन वो किसी के सामने रोते भी नहीं हैं। वो अपने ऊपर तर्स खिलाना लोगों को पसंद नहीं करते। अमूमन जिनकी बीवियाँ फौत होती हैं वो मर्द अपने आप को ज़्यादा बिजी कर लेते हैं, काम में, कोई और दीन की तरफ चले गए, कुछ वो पसंद नहीं करते कि उन पर रहम खाया जाए। तो इसलिए मर्द को अफसोस तो है, लेकिन 3 दिन के बाद मर्द अलाउ है। चौथी एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि जिस्मानी तलब और जो सेक्सुअलिटी होती है वो औरत की निस्बत मर्द में ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर किसी मर्द के ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि आपको शायद ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जब सच्चा दीन आता है तो उसकी क्या तस्वीर है। एक किसी का मैंने वाक्या पढ़ा, एक कालिम थे तो उनकी बेटी की डेथ हुई, तो उनके मिलने वालों में किसी तक खबर पहुंची, फौरन नहीं जा सके, एक भी गुजर गया दिन, दो भी, तीन चार दिन गुजर गए, मतलब फ्यू डेज गुजर गए। फिर वो गए उनके घर में उनकी बेटी की ताज़ियत के लिए। ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ना अफसोस पे जा रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है अल्लाह के फैसलों पे अफसोस करने का। ताज़ियत है, सब्र की बात करें, और 3 दिन तक ही जाना चाहिए, कोशिश करें कि इसके बाद लोगों को डिस्टर्ब ना करें। एनीवे कहते हैं कि जब मैं गया तो घर तो वही था जहाँ मैं कभी गया हुआ था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये कोई मौतला घर है या जैसे होता है, बल्कि मुझे उस घर में कुछ खुशी खुशी का सामान दिखा। पता चल जाता है ना भाग दौड़ से। खैर कहते हैं दरवाज़ा खुला, मुझे बिठा दिया गया, मैं स्टिल कन्फ्यूज़ था, मैं कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया, कि ये घर तो थोड़ा खुशी का सामान दे रहा है जबकि यहाँ चंद दिन पहले डेथ हुई है। खैर कहते इतने में वो जो आलिम दीन थे वो आए, मुझे मिले, मुझे यकीन हो गया वही है। तो मैंने उनसे ताज़ियत करना चाही, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म था, कहा कि आप ताज़ियत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम अपने उसी दामाद के साथ अपनी छोटी बेटी का निकाह कर रहे हैं। तो दीन समझने वाले समझते हैं ना, यानी उन्हीं की बेटी फौत हुई तो दूसरी बेटी का निकाह उस दामाद से कर दिया, तो अब दूसरे कहें लो देखो पहले इंतज़ार में थे, पता नहीं शायद उसने बददुआएं करके मारा बहन को। नहीं, अच्छे लोग जो होते हैं उनके अखलाक जो है ना वो अच्छे होते हैं। तो लिहाजा मर्द 3 दिन के बाद, 3 दिन तो हैं, उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हो जानी चाहिए। ये जो सफ़ें डाल के और दुकानें बंद करके और टेंट और खाने और पीने, अल्लाह ताला हमें इससे भी निजात दे। ठीक है, और कोई सवाल किसी का था? जी आपस मैं समझ गई, आप रुकना सीखें, सब आप सब स्टूडेंट्स की तरबियत भी है ना साथ, जैसे हैंड ब्रेक लगाते हैं ना ऐसे गाड़ी को भी ब्रेक लगते हैं तो हमें भी लगने हैं। इनका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या इद्दत का ताल्लुक औरत की उम्र से भी है, यानी बूढ़ी औरत, जवान औरत, प्रेग्नेंट नहीं। पहली बात देखिए कि हमारे सोसाइटी में चूंकि इद्दत की बेजा किस्म की पाबंदियां लगा ली हमने अपने ऊपर, औरत को बहुत ज़्यादा बाउंड कर दिया जाता है। इस पे भी आप बात कर सकते हैं कि जैसे हम शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आयत में आप पढ़ेंगे खुद के डायरेक्ट कोई किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, ख्वाहिश रख सकता है, फितरी सी बात है। अगर एक औरत जब बच्ची कहीं भी कंवारी होती है या अकेली औरत होती है, ख़ानदान के मिलने जुलने वालों की नज़रें जाती हैं, लोग खुद ही जोड़ तोड़ करने लगते हैं, अब इसकी इधर कर दें अब उधर कर दें, किसी के दिल में इरादा आ सकता है, ख्याल आ सकता है, वो सिर्फ जिक्र कर सकता है कि हमारा इरादा है या हमसे पूछ के करिएगा, लेकिन निकाह नहीं हो सकता और उसकी सारी अरेंजमेंट जो शादी से पहले के होते हैं वो नहीं होते। आराइश के अंदर हर वो चीज़ जो फैंसी लगती है, हम सबको पता होता है कि ये कपड़ा आम पहनने वाला है या फैंसी है, बहुत दफ़ा लॉन के प्रिंट मैरून नीले पीले होते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम जब बहुत अच्छे फैंसी कपड़े पहनते हैं, कढ़ाई वाले बहुत लाइट कलर हैं, फिर भी पता चलता है फैंसी हैं, तो क्या चीज़ जीनत में आ रही है क्या नहीं, इसको हर औरत अच्छी तरह से समझे, इसमें बहुत पिकी नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बाद उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि बड़ी उम्र की औरत है छोटी उम्र है, पाबंदी क्या करनी है, शादी नहीं कर सकते, बड़ी औरत ने तो वैसे भी नहीं अमूमन करनी होती। ठीक है, फिर दूसरी बात है आराइश बड़ी औरतें वैसे नहीं करती, तो इद्दत की वो सख्तियाँ नहीं है जो हमारे यहाँ हैं। क्या औरत बाहर निकल सकती है? कि बिल्कुल नहीं निकले, निकल सकती है किसी ज़रूरत के तहत, तो औरत रीज़न से निकल सकती है, कोई जेन्यन रीज़न है उसको न, मतलब कोई ऐसा काम पेश आ गया, इवन यहाँ तक उलमा इजाज़त देते हैं कि औरत कोई दीन का काम करती है, पढ़ती है, पढ़ाती है, या उसको जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में जाने की आदत है, अपना गम गलत करती है, जाए रात को वापस आ जाए, दूसरी जगह ना रहे उसी जगह वापस आ जाए, तो उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी औरत की तो फिर तो उसकी वो डिले हो जाएगी, फिर तो उसका वो पूरा ही टाइम गुजरेगा, चाहे नेक्स्ट डे बेबी हो जाए और चाहे पूरे 9 माह गुजर जाए। मैंने दोनों केस देखे हैं मैं अपनी ज़िंदगी में, कि एक ऐसी औरत भी, कोई यंग बच्ची के मियाँ की डेथ हुई 1-1.5 साल बाद शादी के, उस लड़के को कैंसर हुआ लेकिन उसकी औरत प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और शायद उसकी डेथ के में भी 10-15 डेज के बाद बेबी पैदा हुई, तो 10 दिन में वो इधर से निकल आई। इसी तरह एक और बहुत ही तकलीफ दह केस हमारे मिलने वालों में हुआ था, अल्लाह सबको ऐसे सदमों से बचाए, 5-6 बहनों का एक ही भाई था, उसकी शादी भी की उन्होंने, फिर शादी के बाद उस भाई की बेटी हुई एक, फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो वो स्विमिंग के लिए गया, तो उसने वहां जाके शायद डाई लगाई, तो मतलब जैसे वो करते हैं ना जब, तो सार उसका जो था पानी के साथ लगा, तो उस लड़के की वहां से डंडत हुई। जब शायद आप सोचें कितना बड़ा सदमा होगा, औरतें ही औरतें हैं ना, पहले बेटियां बहनें थी, माँ भी थी, दादी भी थी, फिर बीवी, फिर एक बेटी थी। कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि उसकी बीवी फिर प्रेग्नेंट है। पूरे उसने तकरीबन 9 महीने की इद्दत गुजरी, फिर एक और बेटी पैदा हुई। ये अल्लाह के फैसले हैं। तो लिहाजा इसलिए इद्दत औरत की एज का कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है जी, और कोई आप?
बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के पास रहते हैं, और तलाक के बाद अगर बड़े होते हैं तो फिर माँ के साथ रहते हैं। तो अगर पाल पाल 3 4 5 बच्चे और बालिक सारे हो जाए तो सबको माँ के साथ रहना पड़ेगा कि कोई अपनी
हाँ जी,
चॉइस के बाद?
इसमें देखिए कि आपका सवाल यह है कि बच्चे डिफरेंट एज के भी होते हैं, कोई बड़े हैं, या अगर सारे ही बड़े हो गए हैं तो क्या बाप के पास होंगे? ऐसा नहीं होता। कुरान में जहाँ भी शादी, तलाक, इस तरह की बातें आती हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दूसरे के साथ फजल करो। ये मामलात किसी फतवे की बेस पे नहीं होंगे कि ये मर्द के हैं, ये औरत के हैं। ये हमेशा आपस में जिसको अल्लाह का जितना डर होगा उसके हिसाब से करेगा। इस्लाम हमेशा एक जनरल रूल देता है, आइडियल सिचुएशन। क्यों? बेटियों की शादी है, बेटों की है, फला। लेकिन इस्लाम को एक इसमें एक पतली डेडलाइन नहीं देता। बस आप देखिए, अगर आपको यहाँ से कहें ना, आप यहाँ से वहाँ जाएं और एक सिर्फ लाइन खींच दें कि आपने इसके ऊपर पाँव रखने हैं, तो आप नहीं चल सकेंगे। थोड़ा बहुत ऐसे है, अच्छी तरह कर लो। औरत कहती है ये मुझे नैन रखना है, और रखने का ये नहीं मतलब कि दूसरे को मिलने नहीं देना। लेकिन आप अदरवाइज दूसरी तरफ सोचें ना, जो मोस्टली हमारी सोसाइटी में होता है कि बच्चे सारे औरत के पास ही रहते हैं, मर्द को तो शौक है वो अपनी दूसरी शादियां करे, रंग रलियां बनाए, वो जिम्मेदारी क्यों ले? अब वो लड़की बेचारी अमूमन उसकी फिर नानी, बच्चों की नानी बच्चों को पालती है। अब वो लड़की की शादी कहाँ करें, कौन 4 बच्चों वाली औरत से करे? बिलफर्ज कोई कहता है हम रख लेते हैं, आप सोचिए मर्द मौजूद है और उसके बच्चे एक तीसरे मर्द के घर में पल रहे हैं, जुल्म है ना? तो इस्लाम कहता है अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, बाकी फिर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह होती है। जी जी इनका सवाल है कि अगर एक औरत की किसी जगह तलाक हुई, उसकी बेटी थी, फिर उस औरत की दोबारा कहीं शादी हो गई, फिर शादी के बाद उस लड़की की जब शादी होगी तो क्या पहला शौहर उसका वली बनेगा कि दूसरा? ऑफ कोर्स पहला बनेगा। और वली बनने में कोई ये नहीं होता कि पूरे शादी का प्रोटोकॉल हो, यानी उसकी इजाज़त और उसकी इजाज़त परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, एक आखिरी स्लाइड बस आप लोग अब नोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम निकाह की, शादी की सब चीज़ों को देख चुके, अब एक चीज़ जो हमने देखी थी, एक निकाह का जो बुनियादी रुकन हमने देखा हक महर है, याद है आपको पिछली स्लाइड की बात? तो बस अब थोड़ी सी हक महर के नाते से कुछ चीज़ें नोट करते हैं, फिर इंशाल्लाह कुरान की आयत से आपको इसको मज़ीद वाज़े किया जाएगा। देखिए, एक सूरत होती है निकाह हुआ। निकाह किसको कहते हैं? ख़ास वो इस्लामिक फंक्शन जिसको जिसमें इजाब व कबूल होता है। फिर उसके बाद रुख्सती भी हुई। रुख्सती हमारे यहाँ उस मारूफ लफ्ज़ है, इधर इशारा है रुख्सती से, ये किनाया है शौहर बीवी के साथ रहने का, यानी फिर लड़का और लड़की को साथ रहने का मौका भी हुआ। इस मौके पे मेहर मुकर्रर होता है, जो भी मेहर रखा जाता है क्या होगा? पूरा दिया जाएगा। ये आइडियल सिचुएशन है जो सबको पता है कि शादी निकाह के मौके पे हक महर का तस्करा होता है, कितना हो, क्या हो, फिर रुख्सती कर दी जाती है। तो मर्द की जिम्मेदारी है कि बीवी को हक महर दे। अगर कोई मर्द नहीं देता तो वो बीवी अगर उसका मुतालबा करती है तो मर्द को देना पड़ेगा। अगर मर्द खुदा न खास्ता दिए बगैर फौत होते हैं तो उनके तरके में से औरत को वो हक महर दिलवाया जाएगा। ये है एक सूरत जो पहली यानी आइडियल सिचुएशन है। एक दूसरे हालात भी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मामले में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। उसमें क्या होता है कि निकाह होता है, नंबर वन, मेहर मुकर्रर नहीं किया। देखिए, मेहर का तस्करा समझ लीजिए, एक होता है कि मेहर का जिक्र ही ना करना। ऐसे निकाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सिफाख है, यानी जिना की एक किस्म है। उसमें और मर्द को तो कुछ मिला ही नहीं। आज जितना औरत और मर्द का इलीगल किस्म का ताल्लुक है, या वैस में जो औरत और मर्द को फ्री सेक्स की इजाज़त दी हुई है, उसमें मर्द आज़ाद है ना, सारी लाइबिलिटीज औरत में है। इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि कोई निकाह हो और उसमें औरत को कुछ देने का तस्करा ना हो। तो लिहाजा कुछ ना कुछ कहना होता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ कबाइल ऐसे हो सकते हैं, कुछ ख़ानदान सरकमस्टांसिस। हर शादी उस तरह तो नहीं होती ना जैसे हमारे यहाँ है कि शादी हॉल में बैठ के हो रही है। इस्लाम एक वर्ल्ड वाइड रिलीजन है, कोई जंगल में, कोई बाहर है, कोई इधर है। तो कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि मेहर का तस्करा तो कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कितना देंगे। मर्द ये कह सकता है कि अच्छा, जो भी मुनासिब होगा दे देंगे, या जो भी आजकल मारूफ है, कभी ऐसे कहा जाता है कि जैसे जितना तुम्हारी खाला का मेहर था उतना रख लेते हैं, अच्छा जितना बड़ी बहन का हुआ था शादी के वक्त, कुछ भी मैं मिसाल दे रही हूँ, ऐसी सूरत हुई, लेकिन अभी रुख्सती की नौबत नहीं आई। अमूमन ऐसा तब होता है जब लड़का एक मुल्क में है तो लड़की दूसरे मुल्क में, करीब नहीं होते या अभी रुख्सती करने का मूड नहीं होता, खुदा ना खास्ता हालात बिगड़ जाएं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है। बस दफ़ा पता चलता है कि लड़का ठीक नहीं था, इधर उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं, लड़की नहीं पसंद कर रही, वट्स एवर, तो फिर तलाक होगी तो क्या होगा? इसमें गौर कीजिएगा, फ़र्क क्या है, निकाह तो हुआ है, रुख्सती नहीं हुई। इस सूरत में तलाक की सूरत में मुतअ तलाक दिया जाएगा। मुता कहते हैं फ़ायदा उठाने को। ये क्या होता है, यानी मर्द की माली हैसियत के मुताबिक जो भी वो खुशी दे सके। समझ लें, निकाह हुआ, रुख्सती नहीं हुई, और हक मेहर कोई स्पेशल स्पेसिफिक लिखा नहीं गया था, अब तलाक हुई तो छोड़ दो, हमारे यहाँ तो दिया हुआ भी ले लेते हैं, उसके मैके की चीज़ें ले लेते हैं, उसके जेवरात छीन लेते हैं। अल्लाह कहते हैं फिर भी दो, जितना भी दे सकते हो खुशी से दो, शौक से दो, ज़रूर दो। आपको कहते हैं कि एक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे थे हज़रत हसन, उनके फिर बेटे, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। तलाक के बाद उन्होंने 10,000 दिरहम का एक तो मतलब एक रकम बीवी को तोहफे के तौर पे दी। इस्लाम कहते हैं जैसे शादी करते वक्त गिफ्ट देते हो ना मुंह दिखाई का, इस वक्त तलाक देते हुए भी दो। आज ये बात कहनी और सुननी कितनी अजीब लग रही है। हम भी देते हैं तोहफे तलाकों के बाद, लेकिन बातों के, तानों के, इल्ज़ाम के, ये ऐसी थी, ये ख़राब थी, इसकी माँ भी ऐसी इसकी है, इस्लाम कहता है तोहफा दो। तो आप सुनिए वो वाक़या कि उन्होंने उनको 10,000, एक बहुत बड़ी रकम होती है, दिरहम दिए जो चांदी के सिक्के थे। तो जब उस लड़की या औरत तक वो गिफ्ट पहुँचा तो उसने एक शेर पढ़ा जिसका खुलासा क्या था, कहने लगी कि मतान कलीलुन लिल खली हबीबिन मुफारिकिन, कहने लगी इतने प्यारे दोस्त के छूटने के मुकाबले में तो ये बड़ा ही बड़ी मामूली सी रकम है। मुराद कहता है कि औरत इतनी सेंटिमेंटल थी, इतनी जज्बाती, कि उसको इन पैसों की कोई खुशी नहीं हुई कि मैंने इन पैसों को क्या करना है, मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझसे चला गया। जब ये जुमला उन तक पहुंचा, बहुत रोए, कहने लगे कि अगर वाकई मैंने इसको इस तरह से तलाक़ बाइन न दे दी होती तो मैं इससे रजू कर लेता। अब देखिए कि इस्लाम क्या सिखाता है। तो फिर क्या है कि अगर मेहर नहीं था कोई मुकर्रर तो जो भी उस वक्त मर्द की हैसियत होगी वो दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन क्या कि निकाह हुआ, नंबर एक, मेहर भी मुकर्रर हुआ, कुछ भी हो सकता है, नकद की सूरत में भी मेहर रखा जा सकता है, जेवर प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में पॉसिबल है। बाद दफ़ा औरत को जो जेवरात दिए जाते हैं उसी में से कुछ मेहर में लिख दिए जाते हैं, तो मुकर्रर हुआ, फिर रुख्सती नहीं हुई, लेकिन उसी से पहले तलाक की नौबत आ गई, अब क्या होगा, आधा मेहर दिया जाएगा। ये कौन सी सूरत है, शौहर बीवी साथ नहीं रहे, सिर्फ निकाह हुआ फिर डिवोर्स हुई, तो हक मेहर आधा दिया जाएगा। ये भी देखिए कि इस्लाम की एक रुख्सत है। आधा क्यों, इसलिए कि एक लड़की शौहर के घर में जाके पलटाई जाती है ना तो उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, सोशल प्रेशर, लोगों की बातें, फिर उसकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि कम हो जाती है, डिवैल्यू होती है। लेकिन लड़की माँ बाप के भी घर में थी, निकाह हुआ लेकिन तलाक हुई, तो कुछ कम प्रेशर आता है। आप देखिए अल्लाह ने कैसे नाप तोल के हक दिए ना, कि कोई बात नहीं, अगर इसका दिल कम दुख है और औरत चूंकि मर्द के साथ रही नहीं होती तो वो एसोसिएशन भी नहीं होती जो शादी के बाद होती है, तो इसलिए फिर इस सूरत में आधा मेहर दिया जाएगा। इस सूरत में वो भी शख्स आता है, यानी ऐसा एक प्रैक्टिकल वाक्य भी हो चुका है कि एक लड़की की शादी ऐसे लड़के से कर दी गई जो शादी के काबिल ही नहीं था, उसमें वो ख्वाहिश ही नहीं थी। अब लड़की गई, रुख्सती हुई, लेकिन उसके साथ रही, उसको अंदाज़ा हुआ कि लड़के में मर्दानगी की खूबी नहीं, तो तलाक हुई, तो उस सूरत में भी फिर उसको आधा दिया जाएगा, क्योंकि वो ताल्लुक़ नहीं कायम हुआ जिस जिसके लिए निकाह हुआ था। फिर चौथी सूरत क्या होती है कि निकाह होता है, मेहर मुकर्रर नहीं किया, कुछ नहीं मुकर्रर हुआ, अब रुख्सती भी हो गई, शादी के हो भी गई, अब क्या होगा, मेहर मिसल दिया जाएगा। मिसल क्या है, मिसाल से, जैसे लाइक, सिमिलर, किसके सिमिलर, जो उस दौर की औरतों का या एक मारूफ है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया बीच में, खाला का, माँ का, फूफी का देख लिया जाएगा, यानी इसमें भी बेसिकली दूसरी कैफियत वाली ही चीज़ है कि जो भी एक मारूफ तरीका होगा उस किस्म से हक महर दिया जाएगा। अब ये चीज़ें तो हो गई, आगे देखिए अल्लाह ताला कहते हैं इन तल्लक तुमुन्निसा, अगर तुम औरतों को तल्लाक दो, कब, मालम तमस्सू हुन्ना, जबकि तुमने उनको छुआ नहीं, इशारा है, रुख्सती नहीं हुई, औ या तफरीदू लहुन्ना फरीदा, मेहर मुकर्ररी नहीं किया था कोई, अब क्या करो, मत्तेउ होना, तो मुतए तलाक दिया जाए। कितना, ये पीछे बात हो गई, उसको कुरान की आयत से दिखाया जा रहा है कितना। अलल मूसी कदरु, मर्द की वुसत ज्यादा है, वो ज्यादा कमाता है, वो हजारों कमाता है तो हजारों दे दो, 100 में कमाता है 100 दे दो, लाखपति है तो लाख दे दो। वलल मुख्तिरी कदरु, और तंगी वाला, हैंड टू माउथ है, गरीब है बेचारा, लेबर वर्क करता है, तो फिर उससे ज्यादा ना करो, ज्यादा मुतालबे ना करो। इस्लाम कैसे औरत और मर्द की, यानी आप देखिए किसी सिक्योरिटी करता है ना, करना कैसे, मताम बिल मारूफ, इज्जत और शराफत के साथ दो, अच्छे तरीके से ये काम करो। ये जो हमने चार सूरतें देखी ना, अब उन चारों को कुरान की आयत से साबित किया जा रहा है। दूसरी सिचुएशन, वह इन तल्लक तुमू हन्ना, तलाक दो कब, मिन कबल अन तमस्सू हन्ना, तुम रुखसी नहीं हुई, ये हमारा सेकंड केस था। वक़द फ़रत तुम लहुन्ना फरीदा, मेहर मुकर्रर हो चुका, अब क्या होगा, फ़निसफ़ु मा फ़रत तुम, तो आधा दे दो क्योंकि औरत को आधा नुकसान हुआ है। हाँ, याफू ना, एक सूरत है हक मेहर से रुकने की कि औरत के मुझे नहीं लेना। जैसे आप, हमारे कल्चर में बहुत सारी औरतों को पता ही नहीं होता, एक जगह मैंने दर्स दिया तो जब हक मेहर की बात हुई तो बहुत सारी औरतें कहने लगी, आज पहली दफा पता चला कि हक मेहर भी होता है, हम तो आज जाके पूछेंगी मर्दों से कितना है। तो मैंने कहा आज ना पूछिएगा, वो अगले दिन आपको आने नहीं देंगे कि आपको क्या, ये क्या सुन के आ गई हैं आप। लेकिन अगर औरत माफ़ करती है कोई बात नहीं, देखिए शादी के बाद तो सब एक जैसा हो जाता है ना, लेकिन अगर कोई माफ़ करे कोई हर्ज नहीं। या फिर याफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा, यानी शोहर आधा देने के बजाय पूरा ही दे दे कि जब तू मेरी बीवी नहीं बनी। देखिए ये आसान है ना, देना जेन्युइन आधा था, लेकिन कहा नहीं आधा नहीं, मैं तुम्हें पूरा ही देता हूँ। औरत कहती नहीं, मैं आधा भी नहीं लेती, जब मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनी मैंने क्या लेना है। कोई बात नहीं, जैसे भी आपस में बात हो जाए। तो ये था एक ओवरव्यू निकाह से लेकर तलाक और उसके डिफरेंट इश्यूज तक। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सोसाइटी में फैली हुई वो चीज़ें जो सिर्फ़ रस्म और रिवाज और कल्चर के नाम पे हम लोगों ने कर ली हैं, उसको दूर करे, और हमें कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की रोशनी में अपने इतने निजी मामलात को हल करने की तौफीक दें। मैं फिर कहूँगी कि एक दफ़ा अगर हम शादी से पहले फ़र्ज़ कर दें, लड़के पे भी और लड़की पे भी, कि आपने अल्लाह का और नबी का बताया हुआ तरीका समझना है, फिर शादी करें, तो मोर देन 60-70% डाइवोर्स जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। मर्द को मर्द के हक पता होंगे, औरत को औरत के पता होंगे। एक छोटी सी बात कहूँगी कि आप ये आयतें जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जो लोग सिर्फ कुरान बरकत के लिए पढ़ते हैं, फिर इन आयतों का क्या मकसद है, यानी स्पेशली निकाह, आज कल जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पढ़ते हुए आपको एहसास हो रहा है ना कि सिर्फ कुरान बाय कुरान पढ़ना, कसम खाना, बरकत के लिए, जिन भगाने के लिए था या समझने के लिए भी था। ऐसी आयतें वाकई इस बात की दलील हैं कि कुरान को अगर समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान करेंगे, जैसे किसी को ड्राइविंग ना आती और वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।